हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 20। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने और ग्रहण करने के लिए आध्यात्मिक कृपा की आवश्यकता है। तो मन से समस्त भौतिक विचारों और बुद्धि से समस्त भौतिक आसक्ति का परित्याग करके मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गारांगे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सूतदेवी, प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 20। कृपया मेरे साथ श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सर्वभूतेषु यैनैकं भावम् अव्यमीक्षति, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येषु येनैकम् भावम् अव्ययमीक्षति अविभक्तम् विभक्तेषु तज्ज्ञानम् विद्धि सात्विकम् लास्ट् अविभक्ति सॉरी सर्वभूतेषु येनैकम् भावम् अव्ययमीक्षति अविभक्तम् विभक्तेषु तज्ज्ञानम् विद्धि सात्विकम् बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण हमें सात्विक ज्ञान के विषय में बता रहे हैं। शब्दों का अर्थ देखिए, सर्वभूतेषु, भूत कहते हैं जितने लिविंग एंटिटीज यहाँ पर हैं, जितने ही जीव हैं, जितने जीव आत्माएं जिन जिन शरीरों में हैं उनको बोलते हैं सर्वभूतेषु। ये जिससे एकम यानी एक यानी जितने भी हैं उसमें एक भावम स्थित यानी उसके अंदर एक ही भाव हमारा स्थित होना चाहिए, भले वो उनके शरीर अलग अलग हो। अव्ययम मना अविनाशी आत्मा उसके अंदर है, ईक्षते देखता है यानी कि वो देखता है कि भले जितने भी जानदार हैं जितने भी जीव हैं लेकिन उसके अंदर एक एक ही आत्मा भगवान का एक ही अंश है, सेम आत्मा है उनके अंदर। अविभक्तम, अविभक्तम मतलब विभाजित, वो ऐसा लगता है डिस्ट्रीब्यूट है विभक्तेषु लेकिन अनंत विभागों में बंटे हुए लगते हैं। अविभक्तम मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, विभक्तेषु मतलब दिख रहे हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट है। तत् यानी वह ज्ञान माना ज्ञानम, उस ज्ञान को विद्धि सात्विकम, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। अनुवाद देखिए, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है उसे ही तुम सात्विक जानो। यानी जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त यानी कि बहुत सारे रूपों में बहुत सारे शरीरों में डिस्ट्रीब्यूट जो होगी सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति, लेकिन उनके अंदर अविभक्त मतलब ऐसी आध्यात्मिक प्रकृति जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। जैसे आत्मा के गुण के बारे में हमने क्या जाना है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गला नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। तो यह अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति जो है वो सबके शरीर में है, तो जो ये देखता है कि सबके शरीर में वह आत्मा है और परमात्मा का अंश है उसे ही तुम सात्विक जानो। उसे क्या जानना है, वो सात्विक ज्ञान है, भले शरीर अलग अलग नजर आ रहे हैं लेकिन आत्मा और परमात्मा एक ही है। श्लोक नंबर 19 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् श्रुणुतान्यपि। ज्ञान कर्म और कर्ता तीन प्रकार के होते हैं और उनके विषय में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो भगवान ने श्री प्रभुपाद ने बताया कि 14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों का विस्तार से वर्णन हुआ है। उस अध्याय में कहा गया है कि सत्वगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकतावादी तथा सत्वगुण आलस्य का प्रमाद होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति का साधन नहीं बनते। यानी कि आप भले जिस भी गुण में रहकर कार्य करोगे वो आपको बांधेगा, उससे आपको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको उन सारे गुणों से बाहर निकलना पड़ेगा। तो चाहे आप अब यहाँ पर हमें भगवान ज्ञान के विषय में बता रहे ना, तो ज्ञान भी भले सात्विक ज्ञान क्यों ना हो, हम यहाँ पर सब लोग क्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए परेशान होते हैं ना कि हमें एजुकेशन चाहिए एजुकेशन, लेकिन हमें पता चलेगा कि सात्विकी ज्ञान भी हमें बंधनकारी, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं। यहाँ तक कि सत्व गुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है, सत्वगुण में भी यदि हम करेंगे तो बंधन का कारण। सत्तरवें अध्याय में विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया था। सेवनटीन चैप्टर में अर्जुन ने क्या क्वेश्चन किया था? चैप्टर 17 टेक्स्ट नंबर 1 अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ति श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र नियमों का पालन नहीं करते हैं, अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? तो फिर कृष्ण ने बताया कि भाई आप जिसकी भी पूजा करते हो तो वो आपकी श्रद्धा के अनुसार सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी हो जाती है। और चैप्टर 17 टेक्स्ट नंबर 4 में भगवान ने बताया यजन्ते सात्विका देवान रक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतान गणश्चैने यजन्ति तामसा जना। अर्थात सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 70वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजाओं का वर्णन है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञानकर्ता और कर्म के विषय में बताएंगे। तो यानी कि अब भगवान हमें ज्ञानकर्ता और कर्म के विषय में बताएंगे कि कौन सा सात्विक ज्ञान होता है, कौन सा तामसी होता है, कौन सा राजसी होता है। उसी के बाद यानी कि ज्ञान के विषय में 21 और 22 तीन श्लोकों में भगवान हमें ज्ञान के विषय में बताएंगे। आज हम श्लोक नंबर 20 में सात्विक ज्ञान के विषय में पढ़ेंगे, जो कि भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य जो इस वो ज्ञान जिससे मनुष्य एक ही जीव आत्मा को जितने भी शरीर हैं विभक्त जितने भी शरीर हैं डिस्ट्रीब्यूट हैं उसमें उसके अंदर एक ही अविभाजित यानी कि बगैर डिस्ट्रीब्यूट की हुई एक ही आध्यात्मिक प्रकृति को देखता है, वही सात्विक ज्ञान होता है। श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा शुभपाद की जय हो। शुभपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति हर जीव में चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा ही हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। यानी कि वो सात्विक ही ज्ञान वाला होता है, उसको पता है कि भले देखने में मुझे वो कुत्ता नजर आ रहा है, बिल्ली नजर आता है, कॉकरोच नजर आता है, लेकिन इसके अंदर आत्मा वही भगवान का अंश है। तो ये सात्विक ज्ञान है। सात्विक ज्ञान हमें हर टाइम पर चाहे हम कुछ भी देखते हैं भगवान की याद दिलाता है। ये ज्ञान होता है, ज्ञान माना नॉलेज, और नॉलेज वही सात्विक है जिससे आप डायरेक्ट से भगवान के विषय में सोचने लगते हो। यदि आपको भौतिक विचार आते हैं तो वो सात्विक ज्ञान नहीं होता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है। अब यहाँ इनको शरीर क्यों ऐसा मिला अलग अलग? क्योंकि उन्होंने पूर्व कर्म जो पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसे कर्म किए थे जिनके अनुसार उन्हें ऐसे ऐसे शरीर मिले। तो यहाँ से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आज हमें भगवान का भक्त बन, यहाँ भगवान ने हमें शरीर दिया मनुष्य का, और हमारे जैसे कर्म होंगे उनके अनुसार हमें दूसरा जन्म मिलेगा। श्री प्रभुपाद जी बोलते अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। तो हमें देखना चाहिए, हर वक्त देखना चाहिए कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं और उनके अनुसार कहीं हमें मनुष्य से नीचे ना गिरना पड़े। क्योंकि भगवान ने पहले ही बताया 14.18 में ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तो मध्ये तिष्ठति राजसा जघन्यगुणवित्तस्तो अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण में ऊपर जाओगे, रजोगुण में सेंटर में रहोगे, तमोगुण में नीचे जाओगे। तो एटलीस्ट हमें ये सोचना चाहिए, और हम लोगों ने इस बात पर बहुत अच्छी तरह से डिस्कस की थी कि सत्वगुण में रहकर कार्य करना भी एक तरह से तमोगुण है, क्योंकि तमोगुण का मतलब होता है अज्ञान। और अज्ञान में रहकर अगर हम अपने इस इंद्रिय को, अपने शरीर को यदि हम सब कुछ समझते हैं और इसको खुश रखने के लिए कोई आध्यात्मिक
धार्मिक कार्य भी करते हैं, भले देवताओं की पूजा भी करते हैं, भले तो भी वो तमोगुणी हो सकता है, तो फिर हम कभी भी इस स्थिति से नीचे जा सकते हैं और पशु योनि प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें और आध्यात्मिक विषयों की और अपनी चेतना को लेकर जाएं, ताकि हमें एटलीस्ट अपने पद से नीचे ना गिरना पड़े। क्योंकि शपोपा जी बोलते हैं कि समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है, जैसा कि सातवें अध्याय में वर्णन हुआ है। चैप्टर नंबर 7 टेक्स्ट नंबर 4 भगवान ने बताया, भूमिरापो नलो वायुः खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह आठ प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृतियां हैं। ये भगवान की अपरा प्रकृति है। और भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 5 में बताया, अपरेयम् इतस्त्वन्याम् प्रकृतिम् विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदम् धार्यते जगत्। हे महाबाहो, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करते हैं। यानी कि दूसरी प्रकृति कौन सी है? एक अपरा है और एक परा प्रकृति यानी जीव है। और भगवान ने आगे बताया श्लोक नंबर 6 में, एतद्योनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम् कृष्णस्य जगतः प्रभवम् प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों प्रकृतियों से होता है। किन दोनों प्रकृतियों से? एक अपरा प्रकृति यानी यह शरीर जिससे बनता है, और एक परा प्रकृति यानी आत्मा। इन दोनों शक्तियों, ये जब भगवान की दोनों शक्तियां मिल जाती हैं, तो सारे प्राणियों का उद्गम होता है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक या आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो यही है असली ज्ञान जो भगवान ने दिया है, अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। जो भी उत्पत्ति है, जो भी संहार है, जो भी कुछ है, अहम कृष्णस्य जगत हो, मैं ही उसका कारण हूँ, उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझसे जानो। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी याद करा रहे हैं हमें कि जैसे सातवें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा? कि प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। यानी कि क्यों होता है संसार में? हम मनुष्य के अंदर यदि भगवान की परा प्रकृति यानी आत्मा ना हो, तो फिर कभी भी जीवनी शक्ति प्राप्त ना हो। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। तो ज्ञान क्या है? कि हम हर किसी को उसी परा प्रकृति यानी भगवान की आत्मा को, हमें ये जानना है कि हम स्वयं भी आत्मा। हम हमेशा बोलते हैं ना कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, हम आत्मा। तो इसका मतलब ये, यहाँ पर हमें ये समझाया जा रहा है, सर्वभूतेषु येनेकं भावं अव्ययमीक्षते, कि आपको खाली खुद नहीं समझना है कि मैं आत्मा हूँ। जितने तुम्हारे सामने है ना, चाहे वो कीट पतंग हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे गटर का कीड़ा हो, चाहे सुअर हो, चाहे जो भी हो, उसके अंदर यदि आप उसी परमात्मा का एक अंश आत्मा के रूप में यदि आप देख रहे हो, तो वो सात्विक ज्ञान है। सात्विक ज्ञान नॉलेज के विषय में बता रहे हैं कि उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति के को प्रत्येक शरीर में देखना ही सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, यानी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में भगवान ने बताया, चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 24, अच्छेद्योयम् अद्धाह्योयम् अक्लेद्यो अशोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम् सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यहाँ पर भगवान ने बताया नित्य है सर्वगत है, ये नित्य है शाश्वत है, कभी भी खत्म नहीं हो सकती, उसका कुछ भी खंडन नहीं हो सकता, अखंडित अखंडित है। तो यही श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवन शक्ति अविनाशी है भले ही शरीर विनाशशील हो। अब शरीर क्यों खत्म हो जाता है, जैसा कि भगवान ने हमें 2.20 में बताया था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नव्वानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर ग्रहण करती है। तो क्योंकि ये शरीर, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते भले ही शरीर विनाशशील है, क्योंकि शरीर को वस्त्र से बताया गया है तो वो तो विनाश खत्म हो जाने वाला, जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है। अभी संसार में आपसी भेद बना, शारीरिक जो भी भेद नजर आ रहा है वो सिर्फ शरीर के कारण है कि मैं छोटा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, या मैं लड़की हूँ वो लड़का है, या फिर मैं मनुष्य हूँ वो पशु है, ये सब शारीरिक भेद शरीर के कारण है। क्योंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप है। अब यहाँ पर अनेक प्रकार के, यहाँ पर भगवान श्री प्रभुपाद जी बता रहे बहुत सारे 84 लाख भौतिक रूप है। अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती, हमें ऐसा लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई, आत्मा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, लेकिन है एक ही परमात्मा का अंश सबके अंदर है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। यानी कि ये जो एक पहलू है जिससे हमें क्या समझना है कि प्रत्येक जीव में भगवान परमात्मा के रूप में अविभक्त जो है वो है, वही परमात्मा जो है सब प्राणियों के अंदर है। ऐसा निराकार ज्ञान, भगवान श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, ये ज्ञान निराकार है कि वही परमात्मा निराकार के रूप में सब प्राणियों के रूप हृदय में है। ये आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। एक पहलू है मतलब कि एक पहलू ये है कि वो भगवान जो है वो अविभक्त सब प्राणियों के हृदय में है, और आगे का दूसरा पहलू क्या है कि उसका, उस परमात्मा का एक अपना अस्तित्व है। जैसे हमने पढ़ा श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 11, भगवान वेद व्यास जी बताते हैं, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। जो तत्वदर्शी होते हैं वो भगवान के तीन, भगवान के परम तत्व को तीन फेस इसमें बताते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये जो परमात्मा पहलू है जो कि सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है, वो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। वो भी आपको आत्म साक्षात्कार में प्रगति कराता है कि आप ये जानते हो कि वो परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो आज हमने, भगवान श्री कृष्ण ने हमें सात्विक ज्ञान के विषय में बताया, और अब हमें राजसिक और तामसिक ज्ञान, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको यही ज्ञान जो है वो भगवान तक पहुंचाएगा। तो आज हमने पढ़ा सर्वभूतेषु येनैकं भावं अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक ज्ञान जानो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।